तरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्तिते। परमादरणीय सज्जनों, महानुभावों, अध्यापकों और प्यारे बच्चों, आज गीता जयंती है। गीता जयंती का तात्पर्य क्या है, आप लोग बच्चे लोग सावधानी से सुनेंगे। गीता होता है, गीता का तात्पर्य गीत से है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का गीत सुनाया था। आज ही के दिन इसका तात्पर्य यह है, आज ही के दिन महाभारत युद्ध आरंभ हुआ था। आप लोग महाभारत का नाम सुना होगा, जिसमें एक गार छौनी सेनाएं, लाखों लाखों सेनाएं एक तरफ और सात अक्षौणी सेनाएं एक तरफ में थी। दोनों लड़ने के लिए तैयार थे। बड़े बड़े युद्धा उस समय भारत के ही नहीं, विश्व के बड़े 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 पराक्रमी भीष्म जैसे, कर्ण जैसे, अर्जुन, भीम इत्यादि सब बड़े बड़े वीर थे, रणबांकुरे, जो युद्ध में कभी हारने वाले नहीं। अब युद्ध छिड़ जाने के लिए अब शंख बजने की तैयारी में थी। इतने में एक अलौकिक घटना हुई। अर्जुन ने कहा कृष्ण से, मैं देखना चाहता हूं कि हमसे युद्ध में लड़ने के लिए कौन कौन है। युद्ध के बीचों बीच में आप रथ को स्थापन कीजिए। कृष्ण ने तुरंत घोड़े की बागडोर को छोड़ दिया और उनका रथ दोनों सेनाओं के बीचों बीच में खड़ा हो गया। कुछ आश्चर्य करने लगे। पांडव लोग डर गए, इसलिए समझी करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कुछ सोचा, कुछ लोगों ने कुछ सोचा, किसी के समझ में नहीं आया कि क्यों ये रथ बीच में आया। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हमारे गुरुजन, हमारे ससुर, हमारे पितामह जी, भाई लोग, स्वजन, आत्मीय बंधु हमसे लड़ने के लिए यहां पर तैयार बैठे हैं। जिन लोगों के लिए मैं यह राज्य चाहता था और वही युद्ध में अपना प्राण देने के लिए तैयार हैं। मैं रक्त से सजे हुए, रक्त से सने हुए, मैं सिंहासन को नहीं लेना चाहता, राज्य को नहीं लेना चाहता, भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करूंगा, किंतु राज्य के लिए इतने लाखों लाखों लोगों को मारकर मैं कदापि राज्य नहीं लेना चाहता। कृष्ण ने ब्रह्म विद्या का ज्ञान वहां पर उनको सुनाया, जो आज विश्व में सर्वत्र पूज्यनीय और आदरणीय है। आप लोगों ने गीता का नाम तो सुना होगा, किंतु गीता का रहस्य क्या है, बड़े बड़े मेधावी विद्वान लोग भी इसमें नहीं समझ पाते। हम इसी के संबंध में दो एक बातें खूब सरल सहज बुद्ध गम्य भाषा में मैं कुछ बतलाने की चेष्टा करूंगा। अर्जुन युद्ध में लड़ने के लिए तैयार नहीं था, कृष्ण ने उनको युद्ध के लिए तैयार किया। इस युद्ध में हुआ क्या, सारे वीर मारे गए, उन सेनाओं में कोई बचा नहीं। एक तरफ में पांचों पांडव और कृष्ण केवल बचे और दूसरी तरफ में 11 सेनाओं में से केवल 3 वीर बचे और कोई नहीं बचा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और एक कोई, 3 ही केवल बचे। लड़ाई कैसी हुई, अद्भुत लड़ाई। किसी ने मंत्र फूंका, बाण चलाया और आग लग गई, सभी लोग जलने लगे। दूसरे ने बाण चलाया और उससे पानी की वर्षा होने लगी, आग रुक गई। जब वर्षा होने लगी तब प्रतिपक्ष ने ऐसा बाण चलाया जो हवा से लोग वर्षा ही एकदम उड़ गई। इस तरह के किसी ने सर्पों की ऐसी वर्षा कर दी, किसी ने कुछ किया अद्भुत, किंतु सब वो विद्याएं भी समाप्त हो गई उन वीरों के साथ में। पांडव लोग युद्ध नहीं जीते। युद्ध हुआ किस लिए आरंभ है, इसका थोड़ा सा कारण बतला करके मैं गीता के गीत पर आप लोगों को कुछ बतलाऊंगा। युद्ध किस लिए हुआ, युद्ध किस लिए होता है, आज विश्व में युद्ध किस लिए होते हैं, राज्य के लिए होते हैं, अपने भोगों के लिए होता है, सभी चाहते हैं अपने शरीर से जितने प्रकार के भोग हैं वो हमको सहज रूप में उपलब्ध हो, हमारी बराबरी का कोई रहे न है। जितने प्रकार के भोग हैं उन भोगों को भोगने के लिए युद्ध होते हैं, मैं सबसे बड़ा हूं भोग करने वाला बन। अभी हम लोग विद्या पढ़ रहे हैं किस लिए, अर्थ आएगा किसी प्रकार से हम लोग रोजगार करेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, रुपया आएगा, खूब आराम के साथ में खाएंगे पिएंगे, बच्चों के साथ में रहेंगे। एक तरफ में वो युद्ध हो रहा था, दुर्योधन इत्यादि थे वो चाहते थे, हाँ इधर सुनिए आप लोग अच्छी तरह से, इधर उधर चित्त मत ले जाइए, 15 मिनट का 20 मिनट का समय आप लोग मुझे दें। दुर्योधन चाहता था, दुर्योधन कौन था, एक राजा थे शंतनु जिनके पुत्र थे भीष्म पितामह जी, बचपन में उन्होंने प्रतिज्ञा की थी पिता के सुख के लिए, मैं सारा जीवन विवाह नहीं करूंगा, बाल ब्रह्मचारी रहूंगा और राज्य को भी नहीं लूंगा, हमारी विमाता का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। विमाता के दो पुत्र थे विचित्र विद्य और चित्रांगद, वो दोनों में से दोनों की शादी हुई, भीष्म पितामह ने शादी नहीं की, एक की शादी होने के बाद में वो मर गए, दूसरे रहे, उनके दो पुत्र हुए, एक हुए बड़े का नाम था धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, जन्म से ही अंधा नहीं ज्ञान का अंधा भी था, बहुत स्वार्थी लोभी भी थे, राष्ट्र के द्वारा मैं सुखी और शांति हो सकूंगा, जीवन में हमारा जीवन सफल हो जाएगा, और दूसरे थे पांडु, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, किंतु किसी कारण से रोग से पांडु रोग उनको हो गया, इसलिए अल्प अवस्था में ही उनको राज्य मिलने पर भी वो मर गए। उनके ये 5 पुत्र थे युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। पांडु के मर जाने के बाद में जब तक ये बच्चे बड़े न हो जाएं, धृतराष्ट्र को राज्य का भार दिया गया, राजा नहीं केवल राज्य रक्षक रहेंगे, जब ये बच्चे बड़े होंगे उनको राज्य दे दे। किंतु उनका लड़का दुर्योधन ने ऐलान किया कि मैं राजा हूं, धृतराष्ट्र समाज के दबाव में कुछ आधा राज्य देने पर तो राजी हुए, किंतु फिर भी जुए तुए में किसी प्रकार से उस राज्य को दुर्योधन ने हड़प लिया, राज्य से वंचित कर दिया। कुछ दिनों के बाद में उनको वनवास दिया गया, और वनवास से लौटने पर राज्य मांगा तो उन्होंने कहा राज्य नहीं दूंगा। कृष्ण दोनों में सुलहनामा करने के लिए गए, लड़ाई मत करो, किंतु दुर्योधन ने माना नहीं। कृष्ण ने कहा कि पांडवों को 5 गांव मात्र दे दो, सारा राज्य तुम ले लो, नहीं ये सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे बिना युद्ध के।
कृष्ण कार्य ठीक दुर्योधन इत्यादि अधर्म का युद्ध कर रहे हैं राज्य के लिए शरीर के सुख के लिए, किंतु पांडव लोग धर्म के लिए कर रहे हैं। किस लिए? धर्म के लिए। गीता में चतुर्थ अध्याय में एक श्लोक आया है, परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण स्वयं भगवान है, उस समय के लोगों ने उनकी परीक्षा भी की, ब्रह्मा इत्यादि जी ने परीक्षा ली उनकी, सचमुच देखा वो परब्रह्म है, नर के रूप में वो नारायण थे, स्वयं भगवान समस्त ईश्वरों के ईश्वर थे। कृष्ण किस लिए आते हैं? भगवान का अवतार भारतवर्ष में रामचंद्र जी आए हैं, कृष्ण आए हैं और भी अवतार हुए हैं। इनके अवतारों का मुख्य उद्देश्य धर्म की प्रतिष्ठा, असुरों का संहार, आसुर चित्त वृत्ति का दमन और धर्म की प्रतिष्ठा। उस समय में भारतवर्ष में जितने भी राज्य थे, बड़े बड़े राजा लोग थे, बड़े शूरवीर हैं। उस समय साइंस की, जड़ साइंस की बहुत उन्नति थी, शब्द का इतना उन्नत विज्ञान था जो जो कादे वह हो जाए, किंतु शरीर के सुख के लिए सभी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। इस शरीर को जानते थे कि मैं हूं। आप लोग बतला सकते हैं, यदि कोई आदमी मर जाए, उसका शरीर रहे और प्राण निकल जाए, तो वो बोलेगा कि नहीं? आप लोग बोलिए, बोलेगा कि नहीं? क्यों नहीं? जिस शरीर को हमने खिलाया पिलाया देखते हैं, यही मैं आत्मा निकल जाए और आदमी उस समय में मर जाए, तो क्यों नहीं बोलता? कारण क्या? शरीर तो है। तो आत्मा को आप लोग खिलाते हैं, आत्मा को देखते हैं, आत्मा के लिए कुछ करते हैं कि नहीं? तो फिर इसी का विचार है, ये अधर्म है। जिसके लिए हम जीवित हैं, जिसके लिए मुख से वाणी निकलती है, जिसके द्वारा हम कान से सुनते हैं, जो अंदर है तब, उसको हम नहीं जानते। शरीर को जानते हैं, शरीर के लिए लड़ते हैं, शरीर के लिए मरते हैं, शरीर से भोजन खाते हैं स्वादिष्ट। आत्मा ये स्वादिष्ट भोजन करती है या नहीं? कभी आत्मा को आप लोगों ने देखा? गीता में इसी ज्ञान को दिया गया। हम लोग ये शरीर नहीं है, गीता का यह विचार है। ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? शरीर में रहने वाला मैं आत्मा हूं। आत्मा संस्कृत शब्द है, आत्मा माने होता है मैं, जिसको अंग्रेजी में आई कहते हैं, हिंदी में मैं कहते हैं। ये शरीर जो हम देख रहे हैं, आप लोग हैं, इसका कुछ भी मूल्य नहीं है, ये मिट्टी है, किंतु हमने इसी को मान रखा। उस समय में महाभारत के युद्ध के पहले अधिकांश जितने राजा थे, जितने साधारण लोग थे, उनका यह विचार था, मैं हूं ये शरीर, मैं राजा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। किंतु आत्मज्ञान क्रमशः लुप्त होता चला जा रहा था, जिसके लिए भगवान उतरते हैं इस जगत में। पांडवों का यह विचार था, कृष्ण का यह विचार था, यह धर्म युद्ध है, क्योंकि यह विद्या लुप्त होती चली जा रही है, खाने पीने में ही लोग मशगूल हैं। एक आदमी को विश्व का यह समस्त डॉक्टर उपस्थित हो जाए और मरने वाला कोई व्यक्ति है, उसको समस्त विश्व के डॉक्टर समस्त अर्थव्यवस्था मिलकर के भी उसको बचा सकती है कि नहीं? एक मिनट के लिए भी नहीं बचा सकती है। इस चीज को समझना चाहिए। आत्मा निकल जाएगी, डॉक्टर लोग या कोई भी उसको फिर से लौटा लाने के लिए समर्थ है कि नहीं?
नहीं।
इसी ज्ञान का नाम अक्षर ज्ञान है। कृष्ण इसलिए लड़ रहे हैं कि यह विद्या भारतवर्ष से लुप्त न हो जाए। संसार में कोई भी ऐसा देश और राष्ट्र नहीं है जिसमें आत्मज्ञान की ये बातें हैं। आप लोगों का परम सौभाग्य है, हम लोगों का परम सौभाग्य है। जिस देश में राम, जिस देश में कृष्ण आए हैं, उसमें हम लोग जन्मे। उस भूली में जहां पर कृष्ण ने खेला वो मथुरा, और ब्रज में आप लोग यहां पर उपस्थित होकर के विद्या लाभ कर रहे हैं, ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। कृष्ण यहां पर भी आए होंगे, गौ आचर आते हुए यहां जरूर आए हैं। अभी कहते हैं भारतवर्ष से कृष्ण बंसी बजाने कहां बजा रहे हैं? बजा रहे हैं भारतवर्ष में ही। कौन से भारतवर्ष में? कोटि कोटि ब्रह्मांडों में कोटि कोटि भारतवर्ष है। एक ही भारतवर्ष ये नहीं है, असंख्य कोटि कोटि ब्रह्मांड है। आज वो किसी भारतवर्ष में वहीं पर बंसी बजा रहे होंगे, फिर एक कल्प के बाद में करोड़ों करोड़ों के वर्षों के बाद में उनकी लीला घंटे फिर यहां पर आएगी। आप उस देश में जन्मे हैं, उस स्थान मथुरा में आप लोग हैं पढ़ रहे हैं, या बहुतों का जन्म यहां होगा। यहां पर के कृष्ण ने बचपन की लीलाएं की, यहां पर अत्याचारी संत को मारा, अगासुर बकासुर को मार करके धर्म की प्रतिष्ठा की। धर्म की प्रतिष्ठा मैंने इसी पे अक्षर विद्या का, ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा की। गीता में लिखा गया एक अक्षर एक क्षर, एक अक्षर और एक पुरुषोत्तम। खर किसको कहते हैं? खर ज्ञान, जो क्षरित होता है, जो कि आज एक तरह का है, कल रूपांतरित हो जाएगा, तीसरे दिन बूढ़ा हो जाएगा, चौथे दिन जीर्ण और मलिन होकर के, और फिर फट जाएगा, फिर अस्तित्व नहीं रहेगा। कोई भी चीज हम जिसको देखते हैं जन्म है, कुछ दिन के बाद में रहेगा, कुछ दिन इसके बाद में पुराना हो जाएगा, धीरे धीरे पुराना से और पुराना हो जाएगा, और अंत में नष्ट होकर के उसका पता ही नहीं अस्तित्व का। यह है क्षर। हम लोग अभी क्षर के अंतर्गत हैं, हमारा शरीर अभी है, अभी नौजवान होंगे, जो नौजवान हो गए हैं वो प्रौढ़ होंगे, जो प्रौढ़ होंगे 50 वर्ष में अब उसके बाद में गिरने लग जाएंगे, बूढ़े होंगे, जरस वृद्ध हो जाएंगे, और 100 वर्ष की आयु में बस समाप्त हो जाएंगे। उनकी आत्मा निकल करके दूसरी जगह जाएगी, शरीर मट्टी में मिल जाएगी। कोई भी मरे उसकी 3-4 प्रकार की गतियां हैं उसके शरीर की। शरीर रख दिया जाए तो कीड़े पड़ जाएंगे, जला दो तो वो भस्म हो जाएगा, और पशु पक्षियों ने खा लिया, कुत्ते गिद्ध इत्यादि ने, तो वो शक्ति कर देगा। यही शरीर की अंतिम दशा है। इसी के लिए हम देखो लड़ते हैं, मरते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या नहीं करते। इसलिए ये खर है, इसके अंदर में जो आत्मा है वो खर है, बद्ध जीव है, और कुछ जीवात्माएं होती हैं मुक्त होती हैं। शरीर से निकल करके उनका इसके अंदर में एक बहुत सुंदर शरीर है, वो कभी जन्मता मरता नहीं है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी, न जायते न म्रियते वदा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्यो शाश्वत अंकुराणे न हन्यमाने हन्यमाने शरीरे। जीवात्मा अजन्मा है, उसका जन्म नहीं है, न जायते, कभी उसका जन्म आत्मा का नहीं, शरीर का जन्म होता है भाई। किसी भी शरीर में आत्मा प्रवेश होने पर उसको कहते हैं जन्म, और जिस समय आत्मा शरीर से निकल जाती है उसको कहते हैं मृत्यु। आत्मा अजर अमर है, उसकी मृत्यु नहीं है। आप लोग अजर अमर हैं, आप लोग कभी भी मृत्यु की नहीं होगी। आप लोग जब से सृष्टि है तभी से आप लोग हैं और अंत तक रहेंगे। ये गीता का दिव्य संदेश है, इस चीज को समझो। कृष्ण इन दोनों से ऊपर पुरुषोत्तम है, पुरुष उत्तम ने? इसी ज्ञान को देने के लिए आ रहे हैं कृष्ण चंद्र। वंशा से जीर्णानी जथा पिहाय, एक उदाहरण देकर के समझो। जैसे कपड़ा है, कपड़ा कभी पुराना होता है कि नहीं होता? ऐसा कोई कपड़ा है जो कभी भी पुराना ना हो? नहीं है। ये शरीर वस्त्र है, आज कल परसों में ये जरूर पुराना हो जाएगा, फट जाएगा जरूर, कोई इसको रख नहीं सकता। जो भी लोग इसको कभी कभी 2000, 4000, 5000 वर्ष तक श्वास रोक करके समाधि के द्वारा इसकी रक्षा कर सकते हैं, 5000 वर्ष तक भी हो सकता है, किंतु अधिक नहीं। ब्रह्मा की आयु करोड़ों करोड़ों वर्षों की है, किंतु उसका भी लय एक दिन होगा। कृष्ण कह रहे हैं वंशा, जिस प्रकार से वस्त्र पुराने मलिन और फट जाते हैं, ऐसे ये शरीर है। मैं युद्ध में तुमको कह रहा हूं युद्ध लड़ने के लिए, यह शरीर के लिए नहीं, इसी आत्मज्ञान के लिए। भारतवर्ष सदा ऐसे ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से दीप्त रहा है। इसकी आग बुझने न पाए, इसकी ज्योति कभी न बुझने पाए। जैसे दिया जलाया ना, ये बुझ जाएगा, किंतु ज्ञान का दीप कभी भी नहीं बुझता है। कृष्ण उसी को प्रज्वलित कर रहे हैं, उसी के लिए लड़ रहे हैं। दुर्योधन लड़ रहा है धन के लिए, राज्य के लिए, वो भी अनिति अपना करके, और ये लोग लड़ रहे हैं कृष्ण की इस शिक्षा को जगत में रखने के लिए। कृष्ण ने कहा देखो भाई, जगत में जन्म ले करके कर्म तो जरूर करना पड़ेगा, कर्म जरूर करना पड़ेगा। तुमसे मैं कहता हूं कि तुम युद्ध करो, युद्ध नहीं करेगा तो तुम मिथ्याचारी से उच्चते। जरूर करना पड़ेगा, काम तो जरूर करना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो काम नहीं करता? श्वास लिए बिना रहा नहीं, या श्वास लेना भी कर्म है, सोना भी एक कर्म है, बिना कर्म किए नहीं रहा जाएगा। इसलिए धर्म की प्रतिष्ठा के लिए तुम काम करो, युद्ध करो, अस्त्र को अस्त्र शक्ति का विनाश करके। सज्जन संत लोग जो हैं, जिनके अंदर में ऐसे ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान है, ऐसे लोग जगत कर रहे हैं, तब तो जगत शुद्ध और शांत और सुख से रह सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कहते हैं वस्त्र पुराना हो जाएगा, फट जाएगा। वैसे शरीर भी पुराना हो जाने के बाद में कर्म के द्वारा शरीर कैसे पुराना होता है, ये दार्शनिक चीजें हैं। इस गहन विचार को अभी नहीं आप लोग समझेंगे, पीछे से समझेंगे, आप लोग के अध्यापक लोग समझेंगे इस चीज को। इसलिए जब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा ही शरीर को छोड़ देती है। जब ये तुम युद्ध नहीं करेगा तभी मरेगा कि नहीं? तो मरेगा। मान लिया कि अर्जुन युद्ध ना करे और पांडवों की सेना उनकी सेना में युद्ध ना हो, तो एक दिन मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे ही। तो क्यों ही सत्कर्म करके मरे, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए मरे? इसलिए हमारे महाराणा प्रताप, शिवाजी और अभी जो बड़े ये सब वीर लोग हुए, इसलिए ये कहा मरे में मरना तो है, मच्छरों की तरह क्यों मरेंगे, धर्म के लिए मरेंगे। चिरकाल तक के लिए, सनातन काल के लिए हम रहेंगे, अजर अमर हैं, कभी मर नहीं सकते। भाई तुम तो ऐसे ही मरेगा, देखो आत्मा अजर अमर है। तुम ये सोचते हो कि मैं बाणों से इनको मार डालूंगा ये मर जाएंगे, और मैं मार डालूंगा ये गलत है। नहीं नंग खिदांति शास्त्राणी, नैनं दहति पावक न चैनं क्लेशयन्तापो न शोषयति मार्गः।
आप लोगों को तो बहुत आनंद का विषय है, आप लोगों के प्राध्यापक और व्यवस्थापक मंडली गीता का कुछ ज्ञान देने की चेष्टा कर रहे हैं।
जीवन भर इस चीज को मत भूलेंगे, आत्मा अजर अमर है, गीता का संदेश जरूर याद रखेंगे आप लोग, भविष्य में आप लोग सब प्रकार से उन्नत होंगे।
तो कहते हैं इसको कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता आत्मा को,
और ये शरीर बिना काटे एक दिन समाप्त हो जाएगा, सड़ बन जाएगा, किंतु आत्मा का न तो जन्म है न मरण है, वो नित्य काल है। इसलिए तुम मत समझो कि मैंने मारा और वो लोगों को मैं मारा और वो लोग मर गए। एक आदमी मर गया, उसकी आत्मा क्या होगी? वो भी मर जाएगी? नहीं मरेगी। हम लोग कभी मरने वाले नहीं हैं, शरीर बदल जाएगा। तो अक्षर किसको कहते हैं? गीता में अक्षर का ज्ञान कृष्ण ने दिया।
अक्षर माने क्या? अभी बतलाया क्षर माने जिनका विनाश हो जाता है, परिवर्तन और ध्वंस हो जाता है,
और जिस वस्तु का कभी भी विनाश नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, उसको कोई मार नहीं सकता, वो है अक्षर। हमारे यहां स्कूलों में पाठशालाओं में पहले बिना पैसे की शिक्षा होती थी, पढ़ाता था कौन? साधु लोग अपने आश्रम में। उनके स्कूलों में पाठशालाओं में धनी आरी गरीब अमीर सभी बच्चे रहते, कोई अपने घर से कुछ पैसा नहीं ला सकता था, भिक्षा से जो कुछ मिल जाती थी उनके साधु संत महात्मा लोग जो व्यवस्थापक थे उन्हीं के घरों में गैया चराते, किसी प्रकार से जो कुछ मिल जाता रूखा सूखा वो ग्रहण करते, जूता खाता इत्यादि व्यवहार में नहीं लाते। इस तरह से रह करके बिना पैसे पेड़ की छाया में वो पढ़ते थे, और ये ब्रह्म ज्ञान इत्यादि और लौकिक ज्ञान की भी बातें उसमें सीखते थे, और उसी में अर्जुन भीम राम कृष्ण लक्ष्मण इत्यादि उस विद्या में पढ़े। आजकल विद्या बहुत खर्चीली हो गई है, और अक्षर का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान देने की कोई बात साधारण स्कूलों में तो, गवर्नमेंट स्कूलों में तो है ही नहीं एकदम। कुछ कुछ आशा की किरणें यही है कि आप लोगों के द्वारा संस्थापित स्कूलों में इसकी कुछ कुछ शिक्षा है, और भी इस शिक्षा को लौकिक शिक्षा को कुछ गौण बनाते हुए, जीवन निर्वाह के योग्य बनाते हुए मूल उद्देश्य अक्षर की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, तब ये शिक्षा यथार्थ में अक्षर की शिक्षा होगी, अन्यथा ये बेकार की होगी, कुछ उससे लाभ नहीं मिलेगा। स्कूल में नहीं होने पर भी आप लोग यथासाध्य चेष्टा करेंगे, गीता में क्या कहा गया उसकी उपलब्धि करने की चेष्टा करेंगे। इन आप लोगों के शिशु मंदिरों में और विद्या मंदिरों में कुछ कुछ इसके लिए प्रचेष्टा की जा रही है, यही एक आशा की किरण है, और सभी स्कूलों में इस सब शिक्षाएं रामायण महाभारत गीता इत्यादि से एकदम उठ गई, उसमें केवल क्षर का ही ज्ञान है। तो अक्षर ज्ञान जो कभी भी जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, जो कभी पुराना नहीं होता, कभी नया नहीं होता, एक रस होता है, वो संसार में कौन सी चीज है आप लोग बतला सकते हैं? जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं जन्मता, एक समान रहता है, बहुत सुंदर। किंतु एक बात और है इसमें, पर जब आत्मा है तो परमात्मा क्या हुआ? परमात्मा किसको कहते हैं? आत्माओं में जो सप्त आत्माओं को जो संचालन करती है, सबसे प्रधान है, उसको कहते हैं परमात्मा। जैसे अध्यापक, प्रधान अध्यापक किसको कहते हैं? प्रधानाचार्य हैं, वह प्रधान अध्यापक हैं। उसी तरह से जितनी भी विश्व में आत्माएं हैं, संसार में आत्माएं हैं, हमारे शरीर में एक एक आत्मा है और इन समस्त आत्माओं का विश्व भर के करोड़ों विश्वों के जो मूल संचालक एक हैं उनको कहते हैं परमात्मा। कृष्ण ही परम परमात्मा है, वो परमात्मा ही नहीं परम परमात्मा, परमात्माओं के भी आत्मा है। शरीर के लिए आत्मा मैं हूं, इसके अंदर में एक एक आत्मा, और अनंत आत्माओं के मूल जो है उनको कहते हैं परमात्मा। इन दो चीजों का ध्वंस नहीं होता, एक आत्माओं का और दूसरा परमात्मा का, और बाकी जितनी चीजें हैं सबका ध्वंस हो जाता है। इसी विद्या का नाम है ब्रह्म विद्या। इसको जानने के लिए लोग चेष्टा करते थे। गीता में अर्जुन ने, अर्जुन को कृष्ण ने इस विचार को दिया, कर्म करने के लिए नहीं कहा, युद्ध करने के लिए नहीं कहा, वो तो गौण उनका खताब करिए, इस ब्रह्म विद्या की रक्षा करने के लिए और इसका उपदेश देने के लिए कहा। गीता में एक एक श्लोक, ये तो हुआ आत्मज्ञान की बात। गीता की एक एक उपदेश महामूल्यवान है। सोने के थाल में यदि चिंतामणि रख दी जाए, ऐसे ये गीता के उपदेश हैं। इसका उपदेश पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी अशांत नहीं रह सकता, सब समय सुखी और शांति से रहेगा। मैं इसके एक श्लोक की तात्पर्य में बतला करके संक्षेप में जो बोधगम्य है आप लोग समझ सकते हैं ये बतलाऊंगा। गीता में एक श्लोक है, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषामहं नित्यभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्। ब्रह्म विद्या का तो आप लोगों को बतला, जो अजर अमर है वो अक्षर है, परम अक्षर कृष्ण ही है। वो मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं किंतु उनको मनुष्य मत समझो, उनका जन्म और मरण नहीं है। जन्म और मरण जैसा दिखता है किंतु जन्म मरण नहीं है। ये शिक्षाएं बहुत दिन की है। मैं संक्षेप में दो एक बातें केवल बतलाता हूं। कहते हैं अनन्य रूप में जो भगवान का परमात्मा जो है, समस्त आत्माओं के जो मूल है, अनन्य रूप से उन कृष्ण का जो भजन करता है, चिंतन करता है, उनके निर्देश से चलता है, तो कहते हैं तेषाम हम नित्य अभियुक्ताना, जो अपने मन को, अपने तन को, शरीर को और आत्मा को हमारे में जीव जो लोग लगा देते हैं उनको, और देह इत्यादि की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, तो उनके जीवन का निर्वाह कैसे होगा। यदि हम अपने जीवन की रक्षा करने के लिए खाएं नहीं, कोई चीज संग्रह नहीं करें, तो हम कैसे जीवित रहेंगे। कृष्ण कहते हैं जे चिंता मत करो, जो लोग अनन्य रूप से हमारा भजन करते हैं, जो सब समय अपने मन को हमारे में लगा दिया है, उनको शरीर की सुध बुध नहीं है, ऐसे भक्तों की जरूरत जो होती है उसका योग और क्षेम वहां नहम। योग माने होता है जो हमारे पास में नहीं है उसको ला देने का नाम है, उससे योग कराने का नाम है योग, और क्षेम में उसकी रक्षा करने का। अब थोड़ा सा समय लूंगा, बस घबराइए नहीं, किंतु ये आप लोग यदि अच्छी तरह से समझ जाएंगे आपके जीवन में एक परिसंपत्ति रहेगी। जो किसको कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, अभी तो है नहीं, यदि कोई योग करा देता है तो इसका नाम है योग, मिला देता है। और क्षेम किसको कहते हैं, यदि 1 करोड़ रुपया मिल गया और किसी को मालूम हो गया तो क्या होगा, अभी मार डालेंगे लोग और रुपया ले लेने की चेष्टा करेंगे। इसलिए हमारे पास में जो है उसकी रक्षा करने का नाम है क्षेम। कृष्ण कहते हैं जिनकी शुद्ध बुद्ध सब हमारे अंदर में आ गई है, जिनको शरीर रक्षा करने का भी होश नहीं है, अनन्यमय उसमें हो गए हैं, उनका जोग और क्षेम मैं बहन करता, बहन माने ढोता हूं। आज से करीब करीब 500-600 वर्ष पहले एक भक्त थे, गीता के विद्वान आदमी थे, उस पर कुछ लिख रहे थे व्याख्या, उनका नाम था अर्जुन मिश्र। क्या नाम बतलाया? ठीक है, यह गीता पर टीका लिख रहे थे। लिखते लिखते जब ये श्लोक आया तो उनके मन में ऐसा संदेह हुआ, ये कभी तो हमने देखा नहीं जो भगवान भी किसी का योग क्षेम धो करके लाते। एक आदमी अत्यंत दरिद्र है, उसको कृष्ण कभी सिर पर टोकरी में चावल दाल आटा घी मैदा इत्यादि धो करके कभी लाते थे? सुना तो नहीं, ना देखा है। मैं बहुत दरिद्र व्यक्ति हूं, अर्जुन जो मिश्र थे कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते, घर में उनके चूहे नहीं थे। बतला सकते हैं कि चूहे क्यों नहीं थे उनके घर में? बतलाइए। भोजन ही नहीं था घर में, अन्न का दाना नहीं, तो चूहा किस लिए रहेगा? ठीक है, तो उनके घर में चूहे नहीं थे, और उनके घर में जो कुछ पानी बरसता था वो बाहर नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि छप्पर ही नहीं। ऐसे व्यक्ति बेचारे थे, गीता में उनका विश्वास तो था। आज जब ये श्लोक आया तो उनके मन में ये संदेह हुआ, मेरी उम्र 60 वर्ष की हो गई, मैं खुद भिक्षा करके जाता हूं और जो कुछ लाता हूं उसे हमारा और हमारी पत्नी का जीवन निर्वाह होता है, किसी दिन मिलता है किसी दिन नहीं मिलता, कभी मुट्ठी भर चना कभी वो भी मना, वो भी नहीं मिलता, ऐसे उपवासी सो जाते हैं। तो भगवान मेरी, मैं उनका तो अनन्य रूप से भजन करता हूं। अनन्य माने क्या? केवल मात्र कृष्ण का ही और किसी दूसरे का भजन नहीं, तब ये अनन्य होगा। और उसमें भी और भी शर्त है, किंतु पीछे वो शर्त हम बतलाएंगे। किंतु अंततः ये होना चाहिए, जो कुछ हुआ वो अपने प्रभु कृष्ण ही से मांगेंगे। तो वो 60 वर्ष की उम्र में सोच रहे हैं, उसका अर्थ लिख रहे हैं, भाई भगवान को कभी धो करके क्यों देंगे? आज तक तो किसी को धो करके दिया नहीं, और आज तक हमारे घर में एक चावल का दाना भी कभी नहीं ले आए। मैं जाता हूं बड़ी मुश्किल से भिक्षा करके लाता हूं। उन्होंने क्या किया, जब उसका अर्थ लिखने का हुआ एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो अर्थ करते करते रुक गए और एक लाल काली दवात से लिया कलम में लाल, और लाल इंक से स्याही से उन्होंने उसको काट दिया, यह गलत है। वो ऐसे दे सकते हैं, दूसरों के माध्यम से भेजवा सकते हैं, किंतु वो क्यों धोने लगे? और दूसरी बात, उनका शरीर ही नहीं है उस ब्रह्म का। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म का शरीर ही नहीं, शरीर तो हम ही लोगों का है। ऐसा नहीं, ब्रह्म का भी शरीर है, उनका ही शरीर नहीं होता, जगत में शरीर आएगा कैसे? इसलिए उन्होंने कहा जा चलो भिक्षा, बस काट करके और पोथी में सूता लपेट करके, डोरी लपेट करके पुष्प को रख दिया ठाकुर जी के घर में और चल पड़े। स्त्री घर में रह गई, कपड़ा तो फटा हुआ था, बस स्त्री का कपड़ा ले लिया और अपना कपड़ा पुराने स्त्री को दे दिया भिक्षा के। आज ऐसा हुआ, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, कोई भिक्षा नहीं मिली। ये सत्य घटना आप लोगों से बतला रहा हूं, जिन्होंने टीका लिखा उन्होंने खुद ही इसमें लिखा। तो उन्होंने जब देखा जैसे 1 बज गया 2 बज गया कि कहीं आज कोई भिक्षा ही नहीं मिली, घर में लौटे बड़े उदास थे इस करके। और उधर वो लाइन याद थी, जोग छे महाम ने हम, इसमें बीच में क्या होता है, एक छोटा सा सांवला लड़का, साधारण सांवला लड़का, एक पीला कपड़ा यहां पर पीतांबर पहने हुए ओढ़े हुए और एक बंगी लेकर, बंगी मैंने समझते हैं आप लोग, बंगी मैंने होता लकड़ी का ऐसा लेकर के उसके दोनों तरफ में रस्सियां बांध दी जाती हैं और उस पर रस्सियों में टोकरी रख करके और उसको ले जाते हैं, जैसे पानी भरने वाले भी ऐसे ले जाते हैं, कांवर जिसको कहते हैं। तो कांवर पर उसने कांवर ले लिया और कांवर पर दोनों तरफ में दोनों बड़ी बड़ी टोकरी और उसमें चावल दाल आटा घी मैदा बूरा खाने का समस्त सामान और सब्जी इत्यादि भर करके और उस ब्राह्मण के घर पर थपथपाया, मैया मैया दरवाजा खोलो। इनकी पत्नी ने सुना अभी तो हमारे पति अदेव आए नहीं, ये कौन है? देखा जी बड़ी सुरीले कंठ से एक बालक की आवाज आ रही, मैया मैया दरवाजा खोलो। जल्दी से आई, दरवाजा खोला, देखा पसीने से लथपथ एक छोटा सा सांवला बच्चा, पैरों में जूते नहीं कुछ नहीं, एक पीली सी चादर यहां पर है। देखा जो पसीने से लथपथ हो रहा है बच्चा, अरे बेटा तुम कहां से आया? तो हमारे गुरु जी ने हमको ये दे दिया, ये जाओ हमारे घर में पहुंचाओ। उन्होंने मुझको दो एक बार बुलाया, उम्र कितनी होगी? 12.5 वर्ष या 8-9 वर्ष की, छोटा अभी सुकुमार बच्चा, अभी किशोर भी नहीं, बालक वो, सुंदर सुकुमार शरीर। देखा जब पसीने से लथपथ हो रहा है